कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रियपनशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद्भागवत के वंदनाओं और प्रार्थनाओं के अंतर्गत गजेंद्र प्रार्थना का 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय से हम अध्ययन कर रहे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम 17वें श्लोक का पाठ आज करेंगे। गजेंद्र अब अपने विषय में कह रहा है, मादृक परपना पशु पाश विमोक्षणाय, मेरे जैसे शरणागत पशु बुद्धि वाले हाथी के शरीर में पाश जो मेरे को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और ये भौतिक जगत के गुणों का पास है प्रकृति के, उससे विमोक्षण आया मेरे को विशेष रूप से मुक्त कीजिए। मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अल्लय, ये श्लोक तो हमने किया भी था मेरे को लगता है। मुक्ताय भूरि करुणाय, आप तो बहुत बड़े दयालु हैं भगवान, ये श्लोक मैं समझता हूँ हमने किया है।
ये 18 है
हाँ, ये किया है, 18 से शुरू होगा बराबर,
जी।
18 से शुरू होगा। आत्मात्म जापात ग्रहवेत जनेशु शक्ति शक्ति दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। आत्मा मन और बुद्धि और आत्म जा और शरीर से उत्पन्न होने वाले पुत्र पुत्रियां आदि, आपत मित्र बंधु, ग्रह घर परिवार, वित्त धन जनेशु और जो भी हमारे सेवक हैं सहयोगी हैं, शक्ति ही उनमें आ सकती, जिनकी भी आसक्ति, अधिक आसक्ति शरीर में, मन में, शरीर से उत्पन्न संतान में, बंधु मित्र घर परिवार में, समाज में, देश में, धन में, सेवकों में, सहायकों में रहेगी, दुष्प्रापणाय उसके लिए भगवान की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। गुणसंग विवर्जिताय, क्योंकि भगवान जो है प्रकृति के गुणों से परे है। गुणसंग विवर्जिताय, भगवान के अंदर प्रकृति के गुणों का प्रभाव तो पड़ता नहीं है। मुक्ता नाम मुक्तात्मा भी स्वहृदय, जो मुक्त आत्मा है, आत्मा राम है, वो अपने हृदय में सदा ही परिभाविताय आपका ध्यान करते रहते हैं। आप कैसे हैं? ज्ञानात्मने भगवते, आप तो ज्ञान स्वरूप है भगवान, आप सच्चिदानंद है, आपका शरीर भौतिक नहीं है। हे ईश्वर, हम आपको भगवान ईश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे नाथ, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त हैं और ऐसे आत्माराम जो है निरंतर आपका ध्यान अपने हृदय में करते हैं, परंतु उनके लिए तो बहुत कठिन है आपको प्राप्त करना। जो अधिक आसक्त है, मन से विचारों में, तर्क वितर्क में लगे हुए, घर परिवार में फंसे हुए, बंधु बांधव मित्र में फंसे हुए, धन सेवक सहायक में फंसे हुए, वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते। आप परम पुरुष भगवान है, प्रकृति के गुणों से परे हैं और आप ज्ञान जिसके द्वारा सबको प्रबुद्ध करते हैं उसका स्रोत हैं, आप परम ईश्वर हैं, नियंता हैं, इसलिए हम आपके चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है, उनके लिए जिनका मन अति अधिक आसक्त है, मन में, पुत्र में, परिवार में, धन में, घर में, अपने अनुयायियों में, और वो भगवान जो प्रकृति के गुणों से परे है, और हृदय में जिसकी मुक्त आत्मा जिसका ध्यान करते हैं, जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और जो पूर्ण ईश्वर है। भगवान, आप भले भौतिक जगत में आते हैं और अपनी लीला करते हैं, परंतु भौतिक जगत के गुणों से आपका बिल्कुल संग नहीं होता, आप उससे प्रभावित भी नहीं होते। आप तो ध्यान का विषय हैं, परिभाविताय, ध्यान का विषय है किसका? आत्मा रामों का, जो अपने में रमण करते हैं, जो मुक्त है, उनके आप ध्यान का विषय हैं। जैसे सुखदेव आदि गोस्वामी, चतुष्ट कुमार, जो ज्ञान में परिपूर्ण है, तो वो आपका ध्यान करते हैं। एक और अर्थ इसका ये है, उस भगवान को प्रणाम करते हैं जिन्होंने आत्मा की खोज को त्याग दिया है। ऐसे लोग भौतिक जगत को ही सब कुछ मान लिया है, उसको समझते हैं, आत्मा को नहीं समझते हैं, और वो आपके शरीर को भी भौतिक समझते हैं, परंतु आपका शरीर पूर्ण रूप से ज्ञान आत्मने है। आप उनके अपराध को जानते हैं और उनके अपराध के कारण उनको दंडित भी करते हैं, उनका उसको वो फल देते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, परम पुरुष भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, परंतु इस भौतिक जगत के प्रकृति के गुणों के प्रभाव से सदा ही परे रहते हैं, प्रभावित कभी नहीं होते हैं। जैसे ईशो उपनिषद में लिखा है, अपापविद्धम, इसका मतलब भगवान में कोई दोष नहीं है, दोष रहित है भगवान। और यहां इस श्लोक में इसको कहा है, गुण संग विवर्जिताय, गुणों के संग से विशेष रूप से आप परे हैं, मुक्त हैं। भगवान भले अवतार के रूप में आए भौतिक जगत में, परंतु भौतिक जगत के गुण उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्य तनुम आश्रितम, ये अज्ञानी मूर्ख ये मेरी अवज्ञा करते हैं, उपहास करते हैं, कहते हैं कि मेरा शरीर सामान्य मानव जैसा है, जबकि मानव का शरीर मेरे शरीर के आकार के ऊपर बना है। पहले मेरा अपना स्वरूप नर आकृति का था और मानव का शरीर उसी आकृति का बनाया है, परंतु मेरा शरीर मानव नहीं है, मानव जैसे कार्य करता है, मानव जैसा दिखता है, परंतु है सच्चिदानंद दिव्य अनादि अजन्मा। तो मूर्ख ही ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए परम पुरुष भगवान को जानने का मुक्त आत्माओं को ही अधिकार है। जो मुक्त है, मुक्तात्म स्वहृदय प्रतिभाविता, अपने हृदय में वही भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ऐसे मुक्त आत्माओं के लिए जो पूर्ण योगी हैं, उनका वर्णन भगवत गीता के छठे अध्याय में हुआ है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते मान समय युक्तत ममतः। योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है जो अपने हृदय में मेरा ध्यान करता है और श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में लगता है, उसको मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं, यम धर्म कर्मार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टं गतिमापनोवन्ति किं चाशीश्वराति अपि देहम अव्ययम् करोतु मे अद्भर्दयो विमोक्षणम्। यम धर्म काम अर्थ मुक्ति काम, जो लोग भगवान आपके पास धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए आते हैं और आपका भजन्तम इष्टान, आपको इष्ट कर समझ के भजन करते हैं, और काय के लिए? अपने इष्ट की सिद्धि के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। गतिम आपनोति, उनको भी आप गति देते हो, कौन सी? किमचा शीशो राति अपि देहम अव्यम, उसको भी अविनाशी आध्यात्मिक शरीर दे देते हो। करो तुम्हें मेरे ऊपर भी कृपा करो अधभर, मेरे हे भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करो, अधभर दया अधभर दयो, मेरे ऊपर भी भगवान दया करो, परम दयालु भगवान मेरे ऊपर दया करो, विमोक्षणम मेरे को भी मुक्त करो इस मुसीबत में जो मैं फंसा हुआ हूँ, मगर के जाल में मेरा, मगर के मुख में मेरा पांव फंसा हुआ है और भौतिक जगत में मैं अज्ञानकार के अंधकार में पड़ा हुआ हाथी के शरीर से मुझे मुक्त करो। भगवान का जो भजन करे, सेवा करे, पूजन करे, उन और क्यों पूजन करे, जिनको चार पुरुषार्थ चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए, तो वो तो इच्छा पूरी हो ही जाती है और किसी आशीष की आवश्यकता ही क्या है। वास्तव में सच्ची बात तो ये है, कभी कभी भगवान उनकी इच्छा पूरी करने के साथ उनको आध्यात्मिक शरीर दे देते हैं अपने ऐसे भक्तों को। वो भगवान वो अति दयालु है, अधभर दयालु है, अपनी दया मेरे ऊपर करके मुझको इस अभी मेरे सामने जो समस्या है, मगर के मुख में मैं फंसा हुआ हूँ और जल के अंदर, उससे मुझे मुक्त करे और मुझे मुक्त करे इस भौतिक जीवन से। धर्म अर्थ काम मोक्ष के इच्छुक मेरी पूजा करते, जो आपकी भगवान पूजा करते हैं वो तो प्रेम का खजाना भी प्राप्त कर लेते हैं, प्रेम का प्रेम की निधि प्राप्त कर लेते हैं। भौतिक तो आशीष मिलता है परंतु आपका प्रेम का खजाना मिल जाता है, उनको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है। ऐसा भगवान जो इतना दयालु है, वो मेरे संसार को, मेरे जन्म मरण के चक्कर को और इस मगरमच्छ के मुख से मुक्त करके मुझे भी आध्यात्मिक शरीर दे दे। बहुत से भक्त भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं होती हैं। ऐसे तो भगवद गीता के सातवें अध्याय में है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्त श्रव, ये चार प्रकार के सुकृतिनु है। इसी का नाम उदाहरण इसी का अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज का दिया हुआ है। भौतिक इच्छाएं परंतु जाते हैं भगवान के पास, वो भौतिक इच्छाएं पूरी होते होते उनका हृदय भी पवित्र हो जाता है और भगवान उनके ऊपर दया करके उनको आध्यात्मिक स्वरूप भी दे देते हैं। तो यहाँ कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जाते हैं परंतु उनको प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, प्रेम का परम लक्ष्य भी मिल जाता है। ऐसे कहा गया है भागवत में, सत्यम दृष्ट्या अर्थितम अर्थितो निर्णम नैवा अर्थदो यत पुनरअर्थिता यत स्वयं विदधते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निज पाद फलवम। भक्त भले किसी भौतिक इच्छा से भगवान के पास आए, भगवान इच्छा पूरी करते हैं तो फिर कोई उसकी इच्छा और रह नहीं जाती भौतिक, और भगवान स्वयं उन भजन करने वालों के ऊपर बिना मांगने अपने चरण कमलों को दे देते हैं और वो चरण कमल उनके लिए सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, अब कोई इच्छा नहीं रह जाती है। जैसे ध्रुव महाराज को गए तो थे अपने पिता से बड़े राज मांगने को, लेकिन भगवान ने दिव्य शरीर भी दे दिया, दिव्य लोक भी दे दिया और धरती का राज भी दे दिया और प्रेम भक्ति भी दे दी। तो ऐसे भगवान मेरे ऊपर कृपा करके इस मगर के मुख से मुझे बचाए और संसार ग्रहात संसार से संसार के बंधन से मुक्त करे, मुझे भी प्रेम भक्ति दें और आध्यात्मिक स्वरूप दें। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस संसार में कुछ लोग अकामी होते हैं, कोई कामना नहीं होती, और कुछ लोगों को सारी भौतिक कामनाएं होती हैं, और कुछ कुछ लोग जो हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चाहते हैं, तो कुछ भी चाहिए, जाना चाहिए भगवान के पास और कहीं नहीं भटकना चाहिए, दर दर भटकना ठीक नहीं। सोमवार के दिन एक देवता के पास, मंगल को दूसरे के पास, बुध को तीसरे के पास, अब भगवान कहता है किसी के ऊपर विश्वास नहीं, एक भगवान के पास जाना। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। चाहे कोई इच्छा न हो या सब इच्छाएं हो या मोक्ष की इच्छा हो, उदार बुद्धि वाला वो है, बड़ी दिल वाला वो है, अकलमंद वो है, समझदार वो है जो तत्काल तीव्रता से भगवान की भक्ति करता है और परम पुरुष का भजन करता है, क्योंकि सभी वहां से प्राप्त हो सकता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। और वैसे भी भगवान ने भगवत गीता में कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस दथेव भजामि हम, जो जिस भाव से मेरे पास आएगा वैसे ही मैं उससे व्यवहार करूंगा। मुक्ति चाहेगा तो मुक्ति दूंगा, भक्ति चाहेगा तो भक्ति दूंगा, धन चाहेगा तो धन दूंगा, पुत्र चाहेगा तो पुत्र दूंगा। तो जो मांगने जाना है वो भगवान के पास जाओ, और क्यों भटक कहीं जाके भटकते। वो दूसरी जगह इसलिए जाते हैं, एक तो वो कम बुद्धि वाले हैं क्योंकि वो समझते हैं भगवान शायद ये इच्छा पूरी नहीं करेगा, भगवान से ज्यादा ये देवता मेरी इच्छा पूरी कर देगा। ये तो एक अपराध हो गया, भगवान को, भगवान से देवता को महान मानने की मूर्खता कर दी। और दूसरा, उससे आप मांग रहे हो जो स्वयं भी सदा रहने वाला नहीं है। मांगना है तो अनंत भगवान से मांगना चाहिए, जो अनंत दे सकता है, अनंत काल तक दे सकता है। तो यहां आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए हैं, मांगने की भी जरूरत नहीं है, अंदर से हमारे भाव को भांप लेते हैं। ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयम सर्वभूतान यंत्र उड़ानी माया। ये तो शरीर रूपी गाड़ी को वही तो चला रहे हैं, तो उससे मांगो जो असल में हमारा स्वामी है। सबको भगवान सौभाग्य प्राप्त करते हैं कि वो अपनी इच्छाएं पूरी करें। ध्रुव महाराज भौतिक जगत के लाभ के अपने पिता और पितामह से बड़े राज के लिए गए थे, परंतु भगवान ने उसको आध्यात्मिक शरीर दे दिया, साथ साथ में राज भी दिया और अपने चरणों का शरण भी दिया। इसलिए गजेंद्र भगवान को प्रार्थना कर रहा है, शरण ले रहा है कि मेरे को इस वक्त जो मेरी परिस्थिति है, वर्तमान में जो मैं मगर के मुख में ग्रस्त हूं, इससे तो मुझे मुक्त कीजिए ही। परंतु वास्तव में ये भौतिक जगत भी दुखदाई है, और भगवान आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए और यहां से भी मुक्त कीजिए। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्र मन्मग्नाः तमाक्षरं ब्रह्म परमं परेशं अव्यक्तम अध्यात्मक योग गमयं आयन्द्रियं सूक्ष्म इवाति दूरं अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे। ईडे का मतलब पूजा करता हूँ, मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। कौन सा भगवान? एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम। एकांतिनो का मतलब जो केवल एक भगवान के एकमात्र अनन्य भक्त हैं, जिनको भगवान की भावना, कृष्ण भावना के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा नहीं है। और किसी भी वरदान के लिए पूजा नहीं करते हैं। यस्य न किंचन अर्थम वांछति, कुछ भी लाभ संसारी की आवश्यकता है ही नहीं। ये वही भगवत परपन्ना, वो है भगवान के शरणागत भक्त, कुछ भौतिक चीज नहीं मांगते, अनन्य भक्त हैं। अति अद्भुतम यचरितम सुमंगलम, क्योंकि भगवान के अति अद्भुत सुमंगल चरित्र को जानते हैं। कैसा है भगवान का चरित्र? गायन्ते आनंद समुद्र मग्नः, वो भगवान का गुण गाते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। कैसा भगवान है? तमाक्षरम ब्रह्म परम परेशम, वो भगवान अक्षर ब्रह्म है, परम परेशम पर ईश्वर परमेश्वर है, अव्यक्तम अध्यात्म योग गमयम, वो भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जाता है, अव्यक्त है, परंतु अध्यात्मिक योग गमयम भक्ति योग के द्वारा जिसको दर्शन किया जा सकता है, जिसको पाया जा सकता है। अइंद्रियम इंद्रियों से परे हैं, सूक्ष्म बहुत अति सूक्ष्म है, इवा अति दूरम बहुत दूर भी है, अति निकट है और अति दूर भी है, अति सूक्ष्म है और अति महान भी है। अनंतम वो अनंत है, आद्यम वो आदि पुरुष है, परिपूर्णम वो परिपूर्ण है। तो उसका शरण लेते हैं जो शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त है, जिनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो भगवान की सेवा करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान का शरण लेते हैं, भगवान का कीर्तन में आनंद लेते हैं और अद्भुत भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करते हैं। वो कैसे वो आनंद भगवान के इस कीर्तन में गुणगान में आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। ऐसे भक्त कभी भी भगवान से कोई वरदान नहीं भौतिक मांगते हैं, परंतु मैं तो बड़े संकट में हूं, भौतिक संकट में हूं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं भगवान, जो आदि पुरुष है, जो अव्यक्त है, जो परेश है, ब्रह्मा आदि का भी ईश्वर है, केवल भक्ति योग से जिसको देखा जा सकता है, और जो सूक्ष्म भी है और जो हमारी इंद्रियों से परे है, अनंत है, आदि पुरुष है, पूर्ण है, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसका पूजन करते हैं। हम उस भगवान की महिमा गा रहे हैं जिसको शुद्ध भक्त, जिनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसे शुद्ध भक्त उनका शरण लेते हैं पूर्ण रूप से हर समय। ऐसे भक्तों का मैं महिमा गा रहा हूं जो आपके गुणगान में सदा निमग्न रहते हैं और आपके अद्भुत चरित्र का वर्णन करते हैं और श्रवण करते हैं। हम उस भगवान की महिमा गा रहे हैं जो पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, जो अविनाशी है, नित्य है, अव्यक्त है, भक्ति योग से प्राप्त होता है, भौतिक इंद्रियों से परे है, छोटे से छोटा भी है, परे से परे भी है, अनंत भी है, नित्य है, शाश्वत है, पूर्ण है। ये भगवान के गुणों का वर्णन है। मेरे जैसे पशु शुद्ध भक्त के कैसे मुझ में लक्षण आ सकते हैं, मैं कैसे शुद्ध भक्ति कर सकता हूं, मेरे में वो गुण कहां से आएंगे। हमें भक्तों की भी सेवा करनी है तो कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम उस भगवान की महिमा गा रहे हैं जिनके भक्त कुछ भी भौतिक चीज भगवान से नहीं मांगते हैं, और ये श्लोक 3 श्लोकों तक चलता है। वो क्यों नहीं इच्छा करते हैं, भौतिक इच्छा क्यों नहीं करते हैं भक्त, अनन्य भक्त भगवान से कुछ क्यों नहीं मांगते हैं? इसलिए नहीं मांगते हैं कि भगवान की शरणागति से जो भगवान जैसा परम धन उनको मिल जाता है तो फिर और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा शरण लेते हैं उनको मैं अपने आप को दे देता हूं, और जिसको भगवान प्राप्त हो जाए उसको और कुछ की चीज की मांगने की जरूरत क्या है, कोई आवश्यकता ही नहीं। तो उनको क्या है, भगवान शरणागति से भगवत धन की प्राप्ति हो जाती है और उनका आनंद अति उत्तम है, वो आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। भौतिक आशीर्वाद उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। इसलिए भगवान बहुत अद्भुत है, अपने भक्तों को ऐसा इति द्रक स्वलीला भी आनंद कुंडे, अपने भक्तों को आनंद के समुद्र में इतना निमग्न करते हैं कि भौतिक चीजों का तो उनको सुमरण ही नहीं रहता। इसलिए भगवान बड़े अद्भुत हैं। मायावादी कहते हैं भगवान ब्रह्म है, जिसको अभी उपाधि उपाधि ब्रह्म को उपाधि मिल गई है। भगवान इस वक्त हम भी भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन हमको शरीर की उपाधि है, ऐसे भगवान को भी उपाधि है। और कुछ तो कहते हैं भगवान भी जीव है, लेकिन कोई पुण्य किया है इसलिए उसकी महिमा बड़ी हुई है। ये दोनों मूर्ख है, कहते ये ठीक है। ऐसे जो कहते हैं वो नरक में जाने वाले हैं, क्यों आप उसकी चिंता कर रहे हो? ऐसे भी लोग सदा रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हम जानते हैं जो पंथ हैं धरती के ऊपर, प्रचार भी करते हैं, ये कृष्ण और राम, ये अपने आप को भगवान कहते थे, ये नरक में पड़े हैं, ऐसे कहते हैं। हमसे किसी ने कहा कि वो कहते हैं नरक में पड़े, हमने बोला सच कह रहे हैं वो, ठीक है, कोई गलती नहीं है उनकी। वो नरक में भगवान पड़े हैं क्यों? क्योंकि उन जैसे लोग तो ऐसी बातें करने के कारण नरक में जाएंगे, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि उनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में जाएंगे, तो भगवान नरक में उनके कारण गए हैं, भगवान नरक में नहीं गए, लेकिन वो नारकी हैं, लेकिन भगवान उनको भी नहीं छोड़ते, उनके हृदय में परमात्मा के रूप में जाते हैं। तो इसलिए भगवान अगर नरक में वो कोई कहता है तो कहो आपकी वजह से भगवान जाएंगे, क्यों आपको भगवान नहीं भूलते हैं, परंतु आप तो नरक में जाने के योग्य है जैसे आपके काम है। तो हम ऐसे भगवान की महिमा गा रहे हैं, गजेंद्र कहते हैं, जो अध्यात्म योग से प्राप्त होते हैं, जो परेशम है, परम ईश्वर में ब्रह्मा आदि का भी ईश्वर है, जो भक्ति योग के द्वारा केवल प्राप्त कर्तव्य होता है, भक्त्या अहम एकाग्रया, वो इंद्रियों से नहीं मिलती है, वो बहुत सूक्ष्म है। श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि इस श्लोक में शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, अनन्य भक्त की परिभाषा है, तो वो शुद्ध भक्ति की श्री रूप गोस्वामी की जो परिभाषा है उस श्लोक का पहले उल्लेख करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यरावृतम अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिर उत्तम। इसमें दो विभाग है, एक है स्वरूप लक्षण, एक है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण सब अवतारों, सब शक्तियों और सब भक्तों सहित उसका जो अनुशीलन करे, मन से, वचन से, शरीर से सेवा में लगे, ये है स्वरूप लक्षण। ये स्वरूप लक्षण नहीं है तो वो भक्ति है ही नहीं। तटस्थ लक्षण है दो, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषिता नहीं है, उससे शून्य है। ग्राम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, शून्यम नहीं है, वो जो ब्रह्म में लीन होने वाला ज्ञान है उससे, और जो भौतिक भोग के कर्म है उनसे ढका हुआ नहीं है, उनको दूर फेंक दिया है, ये दो हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण सामान्य भक्ति से उत्तम भक्ति को अलग करके दिखाते हैं, ये दो न हो तो भक्ति सामान्य हो जाएगी, ये दो दूसरे तटस्थ लक्षण होने से भक्ति उत्तम कहलाती है। तो ऐसे अनन्य भक्त को भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, परंतु गजेंद्र ऐसी परिस्थिति में था कि वो भगवान से अपने संकट से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। वैसे दो उदाहरण है अन्य अभिलाषिता में, अन्य अभिलाषिता है, अन्य अभिलाषा नहीं है, अभिलाषा दूसरी हो सकती है, अभिलाषिता नहीं हो सकती। अभिलाषिता से शून्य होने का मतलब बार बार कोई भोग की इच्छा कभी नहीं होनी चाहिए, शून्य, परंतु अभिलाषा रह सकती है। जैसे द्रौपति संकट की घड़ी में गोविंद करके दोनों हाथ ऊपर करके बुला रही है, वो भक्ति के परिधि से बाहर नहीं है, भक्ति के दायरे से बाहर नहीं, वो अकस्मात अचानक एक बार ऐसी संकट में, जब वो प्राण संकट में है, तो एक बार भगवान को प्रार्थना की। रोज रोज ये भक्ति के, ये ऐसी प्रार्थना करने की आदत नहीं है, परंतु गजेंद्र को वहां नहीं स्वीकार किया गया है अन्य अभिलाषिता में, द्रौपदी तो है परंतु गजेंद्र नहीं है, क्योंकि गजेंद्र भोग करते हुए गज के ग्रह के मुंह में फंसा था। द्रौपदी तो बिचारी भगवान के सुमरण में बैठी हुई, उसको सभा के अंदर नंगा किया जा रहा था। तो गजेंद्र फिर भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अन्य अभिलाषाता वाला जो उत्तम भक्ति में नहीं आता है, जो एक तटस्थ लक्षण है उसमें कच्चा है, पक्का नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं गजेंद्र बेचारा हालातों के कारण भगवान को अपने संकट से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है कि और कोई रास्ता शुद्ध भक्त को दिखाई नहीं देता है, जो भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण ही निर्भर होता है, वो भगवान को प्रार्थना करता है संकट से मुक्ति के लिए। इन ऐसी प्रार्थनाओं में कोई पछतावे की आवश्यकता नहीं है, निरंतर कोई भगवान के गुण नाम रूप लीला का श्रवण कर रहा है और भगवान से कुछ भी नहीं भौतिक चीजें मांगता है, तो वो उसका स्तर ऊपर समझना चाहिए। अगर इस स्तर पे कोई भक्त नहीं है तो कीर्तन से, श्रवण से, सुमरण से आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। जो संकीर्तन से आनंद मिलता है, नृत्य और कीर्तन से जो सुख मिलता है आध्यात्मिक, वो उसको मिलता है जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ये सामान्य लोगों के लिए, सामान्य भक्तों के लिए नहीं है। देखो यह सामान्य भक्त लिखा है, ऐसे सामान्य भक्तों के लिए नहीं है, उत्तम भक्तों के लिए है। ये एक ऑर्डिनरी शब्द लिखा है। देखो प्रभुपाद ने सच एक्सेस इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी डिवोटी, ये वह सामान्य भक्त। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिव्य आनंद की अनुभूति श्रवण कीर्तन और नृत्य के माध्यम से करने का जो एक आंदोलन दिया है, संकीर्तन मार्ग दिया है, उसको भक्ति योग कहते हैं। इसलिए गजेंद्र कहते हैं कि आपको अध्यात्म योग गमयम, केवल भक्ति योग के द्वारा ही आपको प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से कई जन्म लगते हैं इस स्तर को ऊपर आने के लिए, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अति दयालु है। पहले कोई आध्यात्मिक हमारे पास धरोहर नहीं है, आध्यात्मिक विरासत भी नहीं है, फिर भी भक्तों के संग में कीर्तन करने से हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कृष्ण भावना अमृत संघ के आंदोलन में देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जो पाश्चात्य देश से हैं, अफ्रीका से है या रशिया से है, जिनके पास कोई वैदिक साहित्य का पीछे का विरासत नहीं है, फिर भी महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की करुणा कृपा से कीर्तन में और नृत्य में और श्रवण कीर्तन और नृत्य में वो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ और पवित्र है, उसके अंदर कोई धब्बा नहीं है और भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो साफ सुथरा रास्ता है। भक्त्या हम एकया ग्रहया, ऐसे भगवान भागवत में कहते हैं और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं आसक्त मन अपारथ योगम युन्यम मदाश्रय असंगम असंख्यम समग्रम माम यथा ज्ञासी तत्श्रणो। मैं आसक्त मन, तेरा मन मुझ में आसक्त करो, योगम युन्यम मदाश्रय, योग में लगो और मेरा शरण लो, असंख्यम समग्रम, बिना किसी संशय के पूर्ण रूप से आप मुझे जान जाओगे। आप सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ कैसे मुझे जानोगे। तो भगवान को जानने के लिए साधन है श्रवण, और श्रवण करने से निरंतर भक्तों के संग में रजोतमो गुण से ऊपर उठ के हम सतोगुण में स्थित होंगे और फिर हमारे संशय समाप्त हो जाएंगे, अज्ञान नाश हो जाएगा, कर्म की वासनाएं समाप्त होगी, तब आत्मा का दर्शन करेंगे और भगवान की भी अनुभूति होगी। कृष्ण में आसक्ति हो जाए, कृष्ण भावना में आसक्ति हो जाए, निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण हो जाए और भगवान की शरणागति पूर्ण हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यस्य ब्रह्माद्य देवा वेदा लोका चरा चरा नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कीर्ता यथा रचिशो अग्नेह स्वैतो गभसत्तयो निरयान्ति संयान्ति असकृत स्वरोचिशः तथा यतो अयम् गुणसं प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतेरियम् न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तो नायं गुणकर्म न सन् न चासं नेषेदशेषो जयताद अशेषः। ये श्लोक है यस्य, जिस भगवान को ब्रह्म आद्य बड़े बड़े देवता ब्रह्म आदि देवा और सारे देवता वेदा सारे वेद का ज्ञान लोका सारे लोकों के स्वामी लोकपाल चर अचर जगत पूरा और नाम रूप जितने भी नाम और रूप संसार में है विभेदेन अलग अलग उनका विभाग है फलगवया वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कलया वो भी एक भगवान का ही विस्तार है कि कृता भगवान ने उसकी सृष्टि की है जैसे अरचिशः अब उदाहरण दे रहे हैं अग्नि की जैसे चिंगारी अर्चिशा का मतलब अग्नि की चिंगारी अग्नेह अग्नि और दूसरा उदाहरण दे रहे सवितुः सवितुः कहते सूर्य को गभस सत्यः और उसके जो किरणे हैं निर्यंति वो निकलती है अग्नि से अग्नि की चिंगारी निकलती है सूर्य से सूर्य के किरणें निकलती हैं तो जाएंगी कहां संज्ञा संयाति और वापस उसी में उसी से निकलती है फिर उसी में समा जाती है असकृत बार बार स्वरोचिशः स्वरोचिशः का मतलब जो उनका अंश है और थोड़ी देर अलग होता है फिर उसी में वापस मिल जाता है तथा इसी प्रकार यतः वही परम पुरुष भगवान गुण संप्रवाह जो इस सृष्टि के अंदर प्रकृति के गुणों के द्वारा सारी सृष्टि करता है बुद्धि मन मन को बुद्धि को खानी सारी इंद्रियों को शरीर को हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को सर्गाह और उनके विभागों की सृष्टि करता है वही भगवान वास्तव में न कोई देवता है न कोई असुर है न कोई मानव है न कोई पशु है और न स्त्री है और न ही हिजड़ा है और मानव भी नहीं है जंतु भी नहीं है ओ भगवान जिसको कोई गुण और कर्म जिसका कोई भौतिक नहीं है जिसमें निषेध करें ये नहीं है भगवान वो नहीं है वो निषेध जहां पूरा होता है उसके बाद जो शेष बचता है नेति नेति के बाद जो शेष बचता है उस भगवान को जयताद उसकी जय जयकार हो वो अशेष है वो अनंत है। परम पुरुष भगवान एक तो ये अंश अपना छोटा सा विस्तार जीव के रूप में करते हैं जीव तत्व भगवान का अंश है ब्रह्मा से लेकर बड़े बड़े देवताओं तक और वेदों का ज्ञान ये सब भगवान से निकलता है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद और दूसरे जीव जितने हैं चर व अचर जो जो जिनके नाम है जो जो जिनके गुण है सब कहां से आए भगवान से निकले उदाहरण देते हैं कैसे निकले हैं जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है सूर्य से प्रकाश निकलता है किरणें निकलती है तो निकल के कहाँ जाती हैं, थोड़ी देर घूम के फिर वापस उसी में चली जाती हैं। ऐसे ये सब जो भगवान से जगत निकला है, जीव निकले हैं, वापस भगवान में समा जाते हैं। तो क्या निकला है, जीवों का मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, जो कुछ भी निकला ये कहाँ से निकला है, बोला प्रकृति के तीन गुणों का ही विकार है और ये सब भगवान से निकला है और भगवान में समा जाएगा। वो भगवान न देवता है, न दानव है, न असुर है, न मानव है, न पक्षी है, न पशु है, न स्त्री है, न पुरुष है, न दोनों के बीच वाला जो नपुंसक है, न कोई भौतिक गुण में उनमें है, न कोई उनके भौतिक कार्य है और न ही उनका कोई प्रकट या अप्रकट है, सब कुछ उनके अंतर्गत है। वो शास्त्र में नेति नेति करके जिसको अंत में ज्ञानी जानना चाहते हैं वो है भगवान अनंत। उस अनंत भगवान की महिमा हम गाए हैं, जय जय हो उस भगवान की। ब्रह्मा और अन्य देवता और जो कार्य वेदों में वर्णित है, जो लोकों का वर्णन है, जहाँ चर और चर अचर जगत का वर्णन है, जहाँ ये सब भगवान के जीव अंश, ये सब देवता आदि, ये सब भगवान का जीव तत्व है, छोटा सा अंश है और इनके नाना रूपों में भगवान ने सृष्टि को किया है। जैसे अग्नि की चिंगारी और सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकल के सूर्य में समा जाता है, ऐसे ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर भगवान के ने गुणों से सबको, गुणों के विकारों से प्रकट किया है और प्रलय के समय फिर भगवान में समा जाएगा। भगवान न देवता है, न दानव है, न राक्षस है, न मानव है, न पशु है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, किन्हीं किसी भी जीवों की इस श्रेणी में भगवान नहीं आता है और न ही गुण है, न ही कर्म है। जब कुछ नहीं रहेगा, ना ना करके जहाँ पहुँचोगे वहाँ जो रहेगा वो भगवान है, इसलिए उसको अनंत कहते हैं और उसकी महिमा हम गा रहे हैं। ये तीन श्लोकों में भगवान का जो शुद्ध और सिद्ध स्वरूप है उसका वर्णन किया गया। दो प्रकार के भगवान के विस्तार हैं, एक जीव अंश है और एक विष्णु तत्व है, अंश है। जो जीव अंश है, जैसे ब्रह्मा शंकर भी कभी कभी ब्रह्मा के लिए योग्य पुरुष नहीं होता है तो भगवान को ब्रह्मा बनना पड़ता है, और प्रायः शंकर जी जीव तत्व नहीं है, भगवान का ही विकृत रूप है, विष्णु का सदाशिव के रूप में। परंतु कभी कभार जीव को उस स्थिति में आना पड़ भी सकता है। और जो भगवान के विष्णु तत्व है, मत्स्य, कूर्मा आदि ये अवतार जो है, ये सभी भगवान से निकलते हैं, ये सभी भगवान हैं। वेदों में जो सृष्टि का कार्य भगवान के द्वारा है वो भी भगवान, वेद किसने दिए, भगवान ने दिए। और ये वेद तो पुरुष है, ये छोटा नहीं है, ये भगवान के समान ही है। और पहले श्लोक को समझाने के लिए दूसरे श्लोक में श्रुति का श्लोक दिया है, यथा अग्नेहे शुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्छन् चरन्ति विचरन्ति। जीव जो है वो अग्नि की चिंगारियों की तरह चारों ओर चमक रहा है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसी प्रकार जीव जो है भगवान का सूक्ष्म अंश है और इसको फिर शरीर मिलता है गुणों के द्वारा, बुद्धि मिलती है, मन मिलता है, शरीर मिलता है। भगवान इन सब के कारण है परंतु भगवान उन सब से अलग है। जीव जंतु से भगवान अलग है, स्त्री पुरुष से भगवान अलग है। निशेष शेष भगवान की शक्ति अनंत है, भगवान अनंत है और नेति नेति करके जो बचता है वो भगवान है। प्रभुपाद लिखते हैं परम पुरुष भगवान की अनंत शक्तियों का सार दिया हुआ है इस श्लोक में। भगवान अपने अंशों के और शक्ति के द्वारा सर्वत्र व्यापक है, सब जगह सब समय उपस्थित है। कैसे परास्य शक्ति विविधै श्रोयते, पर इस परास्य परमेश्वर की शक्ति विविधई बहुत सारी है, श्रूयते जिसके द्वारा सृष्टि होती है और वो अपने आप स्वभाव से काम कर, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान शक्ति बल शक्ति क्रिया शक्ति अपने आप कार्य करती है, इसलिए भगवान अनंत है। न तत् समस्या भी अधिकश्च दृश्यते, न भगवान के समान कुछ है न भगवान से महान कुछ है, भगवान अनंत रूपों से मैं अपने आप को प्रकट करते हैं, चाहे अवतार के रूप में करें या जीव के रूप में अपने आप को विस्तृत करें, परंतु अपने आप को कुछ नहीं करता है, भगवान नहीं करते हैं। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उनकी संकल्प शक्ति से ये सब होता है, ये योग और ऐश्वर्य है भगवान का, ये भगवान की अनंत शक्तियों के द्वारा होता है। जी जी विषे नाहम इहा मुया किम अंतर बहिश्चा वृते भ्यः योन्या, इच्छामि काले नयस्य विपल्वा तस्यात्मलोका वरणयस्य मोक्षम। अब इस मगरमच्छ के मुख से बचने के बाद मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, आए हाथी के शरीर की क्या आवश्यकता है, जो अंदर से भी अज्ञान और बाहर से भी अज्ञान, मैं तो शाश्वत मुक्ति चाहता हूं अज्ञान के इस शरीर से। ये मेरा शरीर समय के साथ समाप्त नहीं होगा, फिर लेना पड़ेगा, आप ही भगवान मुझे मुक्त कर सकते हैं। जिजी विषे ना हम इहा मोया किम, मैं इसके बाद जीना नहीं चाहता हूं, जिजीशे जीने की इच्छा नहीं मुझे इस संसार में, अमूय और दूसरे जन्म में भी नहीं जाना चाहता हूं। क्या आवश्यकता है, अंत बहि आवृत्या, अंदर और बाहर से ढका हुआ है अज्ञान से आवृत्या, इब्भ योनिया हाथी की जोनी में, इच्छामि काले न यस्य विपल्वः, समय मेरा कल्याण नहीं करेगा, मेरे को नाश नहीं करेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, तस्य आत्मलोक आवरणस्य, मुझे तो आपके धाम में मुक्ति चाहिए, मैं इस भौतिक जगत में मगरमच्छ के मुख से मुक्त होने के बाद रहना नहीं चाहता हूं। क्या आवश्यकता है हाथी के शरीर में रहने की, जिसमें बाहर तो जड़ अंधकार को है ही, अज्ञानता है ही, अंदर से भी अंधकार ही अंधकार है, मुझे तो पूर्ण मुक्ति चाहिए अज्ञानता से और आपके चरणों का शरण चाहिए। तो आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, गजेंद्र भगवान कहते तो आपको इस मगरमच्छ से मुक्त होना है, नहीं नहीं नहीं, क्या मेरे को फिर हाथी के शरीर में रहने का लाभ होगा, मगरमच्छ से मुक्त हो जाऊंगा, हाथी के शरीर में तो रहना पड़ेगा, तो ये तो अंदर बाहर से ही अज्ञान का शरीर है, नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, मुझे आत्मलोकावरणस्य, मुझे चाहिए मुक्ति, जो ये शरीर समाप्त होगा तभी होगी। क्योंकि ये शरीर जब तक रहेंगे तो आपका आपकी जानकारी के ऊपर पर्दा चढ़ाई रहेगा और अज्ञान सदा हावी रहेगा। इसका दूसरा एक अर्थ ये है कि मैं चाहता हूं आत्मा लोका, वैकुंठ के दरवाजे पे जो कड़ा है ना उसको आप खोल दीजिए, और मैं अधिकारी नहीं हूं फिर भी आपको, आप मुझे वैकुंठ की प्राप्ति कराइए। प्रभुपाद कहते भौतिक जगत में सभी लोग अज्ञानता के अंधकार में जन्म लेते हैं, इसलिए गौतम्य तंत्र में ये मंत्र है, ओम अज्ञान तिमरांधस ज्ञान अंजन शलाकाय शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा जन्म अज्ञानता के अंधकार में हुआ, गुरु जी ने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखों को खोला, इसलिए बार बार मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भौतिक जगत में अनादिकाल तक रहे तब भी इससे अपने आप मुक्त नहीं हो सकते और सदा रह भी नहीं सकते, और ये भौतिक जगत में हमारा रहना अज्ञानता के कारण है। नहीं तो अज्ञान नहीं हो तो हर जीव भगवान का अंश है, तो किसी को हाथी के शरीर में, किसी को मानव के शरीर में, किसी को अमेरिका या भारतीय के शरीर में रहने की क्या जरूरत है। सबको जन्म मृत्यु से मुक्त ही तो होना चाहिए, परंतु अज्ञान ऐसा है कि जो शरीर हमको मिला है उसी में हमको सुख मिलेगा, परंतु इस जन्म परंतु इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के जीवन से लेके एक कीट पतंग तक और चींटी तक सभी प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई सुखी नहीं है। आभो ब्रह्मा भुवना बेवना ब्रह्मलोका पुनरावर्ती नो अर्जुन। भौतिक जगत में वास्तविक सुख है ही नहीं। हम यहां स्थायी कोई समस्या का समाधान करना चाहिए वो संभव नहीं है, इसलिए भगवान की प्रार्थना करके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यहाँ से आगे कल 26वें श्लोक से पढ़ेंगे। सो अहम विश्व सृजन विश्वन अविश्वन विश्व वेदसम विश्वात्मानम अजम ब्रह्म प्रणत्वास्मि परम पदम। अब कितने श्लोक बचे हैं जो मैं समझता हूँ, अब हैं 2-4 श्लोक, कल पूरा हो जाना चाहिए मैं समझता हूँ, आगे जो भगवान की इच्छा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी।
बोलिए सतीश जी।
प्रभु जी, भगवान तो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं है, जो देवी देवता हैं सारे वो सब क्या प्रकृति के गुणों के अधीन हैं सब?
हाँ जी।
उसमें कैसे पता चलेगा कौन से देवता किस वो रजोगुण में है या वो तमोगुण में है?
प्राय सारे देवता सतोगुण में होते हैं।
सतोगुण में है?
अच्छा। प्राय देवताओं की श्रेणी सतोगुण में आती है।
अच्छा।
वो भले तमोगुण आदि के अधिपति हों लेकिन स्वयं देवता सतोगुण में माने जाते हैं। कभी कभी उनमें राजसिक प्रभाव आ सकता है लेकिन प्राय सातोगुणी होना चाहिए। ऐसे लिखा है कि सतोगुण में जो शरीर छोड़ता है वो देवता के लोक में जाता है, इसका मतलब देवता सात्विक हैं तब उधर जाएगा कोई सतोगुण वाला।
अच्छा जी। अच्छा।
हाँ जी। हाँ जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी।
ये जो लास्ट लोग हमने अभी सुना, जैसे आपने बताया उसकी ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गजेंद्र डिजायर कर रहा है इटर्नल लिबरेशन फ्रॉम द कवरिंग ऑफ इग्नोरेंस।
हाँ, गजेंद्र वांट्स टू गेट लिबरेशन फ्रॉम कवरिंग ऑफ इग्नोरेंस। तो कवरिंग ऑफ इग्नोरेंस तो है मटेरियल बॉडी, जिसको मैं मान के बैठा है। ये देह अध्यास ही अज्ञानता है, देह को मैं मानना ही अज्ञानता है, उससे मुक्त होना चाहता है, शरीरों के चक्कर से ही मुक्त होना चाहता है।
जी जी ब्रो, ठीक है।
हाँ जी। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे।